नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज द्वितीयक स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण और उत्पादन के लिए देश में पुनर्चक्रण क्षमता विकसित करने के लिए 1,500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। यह योजना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का हिस्सा है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू क्षमता और आपूर्ति श्रृंखला में परिवर्तनशीलता लाना है। वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 56वीं बैठक नई दिल्ली में जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 2 दिन की बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इसमें देश की अगली पीढ़ी के GST सुधारों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इनमें कर दरों को युक्तिसंगत बनाना और अनुपालन को सरल बनाना शामिल है। आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पयुल्वुला केशव ने कहा कि उनकी पार्टी GST में केंद्र सरकार के प्रस्तावित बड़े सुधारों का समर्थन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में GST के अगली पीढ़ी के सुधारों के महत्व पर बल दिया था। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने पिछले महीने हुई मंत्री समूह की बैठक में GST में महत्वपूर्ण सुधारों का प्रस्ताव रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमीकॉन इंडिया 2025 के दूसरे दिन सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विशेषज्ञों से बातचीत की। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सेमीकंडक्टर से संबंधित विभिन्न उत्पादों तथा परियोजनाओं की जानकारी ली। श्री मोदी सेमीकॉन इंडिया के CEO गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। 3 दिन के सम्मेलन का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री ने किया था। सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में भारत को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान डेविड वडेफुल ने आज नई दिल्ली में वार्ता की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक सहयोग, सुरक्षा, रक्षा, जलवायु, भावी तकनीकों और लोगों के बीच परस्पर विचारों का आदान प्रदान किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि जर्मनी ने आतंकवादी हमलों से भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन किया है।
We greatly value the understanding that Germany has shown with regard to India's fight against terrorism. Minister Wadiful has himself been explicit about our right to defend our people against terrorist attacks. Our parliamentary delegation that visited Germany in June after Operation Sindhu was also warmly received. There's been an uptick in our defense and security cooperation.
जर्मन विदेश मंत्री जोहान वाडेफुल ने प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में भारत की सराहना की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विद्यार्थियों से डिजिटल युग में उपलब्ध विशाल शिक्षण संसाधनों का उपयोग करने का आग्रह किया है। तिरुवडूर में तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि देश के उद्योग 4th चरण के लिए तैयार हैं और विद्यार्थियों को इसका अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ की केरे गुटालू पहाड़ी पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले CRPF, छत्तीसगढ़ पुलिस, DRG और कोबरा के जवानों को सम्मानित किया। श्री शाह ने कहा कि ऑपरेशन के दौरान जवानों की बहादुरी और पराक्रम को नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज 9 महिलाओं सहित 20 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। इन पर 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था। ये माओवादी कथित तौर पर हिंसा की कई घटनाओं में शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी ने 2 मतदाता फोटो पहचान पत्र रखने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की आलोचना की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए निर्वाचन आयोग से उच्च स्तरीय जांच की मांग की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने देश भर में मूसलाधार बारिश के बीच पृथ्वी विज्ञान और मौसम विभाग के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा के लिए मजबूत शुरुआती चेतावनी प्रणालियों और वास्तविक समय में मौसम अपडेट की आवश्यकता पर बल दिया। उत्तर भारत के अधिकार राज्यों में मूसलाधार वर्षा का दौर जारी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में बादल फटने की कई घटनाओं से अचानक आई बाढ़ में कई लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग लापता हैं। पंजाब में भाखड़ा सहित सभी बांध लबालब भर गए हैं और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण सतर्क रहने का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।